Yeah. Thank you. आनंद चिन्मय रस प्रवृत्ता भाविताभिर्ताभिर्जये बलिरूपतया कलाभिः
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
పురుషం తమహం భజామి
గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి
స్థితి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖా ఛాయేవ జస్య భువనాని విభర్తి దుర్గా
కామ సహజ ప్రణయాది భీతి వాత్సల్యమోహ గురుగౌరవ సేవ్యభావై
సంచింత తస్య సూత్ర చింతన
देखो बाद में मर जाएगा एक मिनट के लिए कोई चीज तो हम लोग अभी तक बचे हुए हैं काल के दाग में नहीं चले गए अस्वस्थ नहीं हो गए और कुछ विघ्न बाधाएं नहीं आई प्रतिवर्ष की तरह हम लोग अब उपस्थित हैं कृष्ण की या जन्माष्टमी की या सेवा करने के लिए बड़े सौभाग्य की बात यह भी है कि हम लोग मथुरा धाम में जहां पर कृष्ण स्वयं आविर्भूत हुए थे हम गोकुल के करीब में हैं जहां पर कृष्ण स्वयं कृष्ण जन्म ग्रहण किया जन्म की लीला जहाँ पर हुई थी, यहाँ पर वही नदी यमुना नदी यहीं पर प्रवाहित हो रही है, दूर नहीं है वो, वही स्थान पर हम लोग हैं जहाँ पर की कृष्ण की लीलाएं हुई थी। विशेष करके कंस चारु मुष्टिक इत्यादि का दमन यहीं पर किया था, वही कंस किला है जहाँ पर के कृष्ण को समस्त मथुरा वासियों ने किन किन रूपों में द्वादश रसों में देखा। किसी ने अत्यंत सुंदर स्वरूप मनुष्य के रूप में देखा, गोपियों ने प्राण प्रियतम के समान देखा, मल्लों ने
वज्र के समान
देखा, कंस ने जम के रूप में देखा, सखाओं ने सखा के रूप में देखा, माता पिता भाव के लोगों ने उनको पुत्र के रूप में देखा, विष्णु वंशियों ने अपने पर देवता के रूप में देखा, योगी लोगों ने तत्त्वम परम योगिना परम तत्व के रूप में योगियों ने देखा। इसी प्रकार से जो जैसे लोग थे उसी द्वादश रूपों में एक ही विष्णु को दर्शन किया और यहीं पर कंस को पछाड़ा, चारों मुष्टि को पछाड़ा और अपने राज्य नहीं लेकर के उग्रसेन के सिर पर वहां का मुकुट दे दिया और कहा जैसे देवता लोग भी आपको बलि प्रदान करेंगे, उपहार देंगे और लोगों की तो बात क्या है, विश्व के सभी लोग आपके चरणों में उपठौकन और ये सब देंगे और आप यहाँ का राजा है। अपने नहीं हुआ उनको राज्य के लेने की क्या जरूरत। यहीं पर समस्त ऋषि महर्षि लोग भी आए मथुरा में और पुनः यहाँ से फिर द्वारका में चले गए। ऐसे ऐसे सब बाल्यकाल से लेकर के द्वारका लीला तक समस्त लीलाएं ये मथुरा मंडल ब्रज मंडल में हम लोगों का कितना सौभाग्य है, आर पार नहीं, बहुत बड़ा भारी जन्म जन्मों का सुकृति का यह फल है कि हम लोग जन्मभूमि ये ब्रजमंडल में और मथुरा मंडल में हम लोग। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की, वेदांत दर्शन का भी प्रकाश किया, उन्होंने महाभारत की रचना की, अद्भुत ग्रंथ महाभारत श्रीमद् भागवत और गीता में पढ़ने के लिए कुछ बुद्धि गुरुजनों की सेवा और कुछ साधन करने चाहिए तब गीता में प्रवेश करेंगे। वेदांत में ऐसे तैसे नहीं होगा प्रवेश, उसमें तो दांत सब तोड़ने पड़ेंगे, सब बुद्धि के अकल के जितने दांत हैं वो सब टूट जाएंगे तब फिर वेदांत होंगे, उसमें बिरले लोगों का ही प्रवेश होगा। इस वेदांत में जो व्यास जी के प्रकटित वेदांत है इसमें शंकराचार्य जी के 32 दांत उखड़ गए, एक तो ही नहीं 3200 दांत उखड़ गए, प्रवेश नहीं कर सके, उसके ऊपर में ही बस भूमिका बांधने में ही लगे रह गए और उसके अर्थों को जगत में सिद्ध रूप में प्रकाशित नहीं कर सके। मध्वाचार्य भी आए, उन्होंने कुछ कुछ रूपों में प्रकाशित किया और जाकर के बद्रीनारायण में व्यास जी के शिष्य बनकर उनसे पूछा कि हमने वेदांत का जो भाष्य लिखा है आप जरा देखिए तो कैसा हुआ। हाँ अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है, माने क्या
ठीक।
और कुछ कुछ रह गया, रामानुज ने विशिष्टार्थ पर श्री भाष्य लिखा जो श्री जी के अनुकूल था, उसमें ऐश्वर्य पर भावनाएं थी, उन्होंने शंकर के मत को खंडन कर उसके पहले विज्ञान भिक्षु की इत्यादि के मत को खंडन कर भास्कराचार्य के मत को खंडन कर समस्त लोगों के विचारों को जो मायावाद से संबंधित थे उनको खंड विखंड चूर्ण विचूर्ण करके उनमें श्री भाषण, उनमें नारायण को पर तत्व तो बतलाया और जीव और ब्रह्म इत्यादि में विशेषण और विशेष्य का भाव रखा, सब कुछ किया। उन्होंने व्यास देव से पूछा ये कैसा हमारा भाष्य हुआ, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक ही हुआ है। उनको भी इसी प्रकार से उत्तर दिया। इसके बाद में हमारे निर्वाचार्य पर्याप्त सौर भाष्य उसका लिखा और लोगों ने भी लिखे, किंतु एक देशी ही विचार दिखे रहे, पूर्ण विचार नहीं हुआ। तत्पाश्चित चैतन्य महाप्रभु जी पधारे, उन्होंने साधन भट्टाचार्य को वेदांत का अप्रतिम भाष्य श्रीमद् भागवत के पुराण पर आधारित विचारों के अनुसार में परिपूर्णतम विचार से समस्त विचारों का समन्वय करते हुए विश्व में एक अद्भुत चीज को प्रकाश किया, अचिंत भेदाभेद तत्व। और उसी के अनुसार में उन्होंने ये विचार प्रकट किया जो वेदांत भाष्य का यथार्थ तात्पर्य गोविंद जी के सेवा में ही पर्यवसित होता है, और इसीलिए इनके बाद में इन्हीं के विचारों को लेकर के गोविंद भाष्य की रचना हमारे बलदेव विद्याभूषण ने जो की, और इसी यही व्यास देव जी के परिपूर्ण मन के अनुकूल संपूर्ण भाष्य का सार है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विचारों को, जीव गोस्वामी के विचारों को, हमारे और कृष्णदास कविराज इत्यादि के विचारों को, विश्वनाथ देव त्रिपाठी इत्यादि के विचारों को लेकर के वेदांत भाष्य का गोविंद भाष्य प्रणीत किया। इसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत के समस्त तात्पर्यों को लेकर के उसमें निहित कर दिया। इसके अतिरिक्त व्यास जी ने 18 पुराण भी लिखे जिसमें श्रीमद् भागवत को संक्षेप में लिखा, किंतु तो भी उनको शांति नहीं मिली। सम्यप्राश स्थान में सरस्वती नदी के किनारे कुछ खिन्न मन से बैठे थे, उसी समय में नारद जी सौभाग्य क्रम से आए। उन्होंने कहा जैसे आपने तो समस्त धर्म कर्म जो कुछ थे आपने सबका निर्माण किया, विशेष करके आपने एक विचित्र श्रीमद्भाग महाभारत की रचना की जो इन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत में, गीता में, श्रीमद्भागवत में, भागवत मैंने उसमें चतुश्लोकी भागवत संक्षिप्त में लिखा था, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है, किंतु आपने एक ऐसी सर्व सहज रूप में एक महाभारत की रचना की जिसमें लड़ाई झगड़े करने वाले तामसिक व्यक्ति थी, जिसमें बुद्धि इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, स्थूल बुद्धि वाले लोग भी, जिसमें राजसी और सात्विक वृत्ति वाले लोग भी, जो कि लड़ाई झगड़ा जुआ पाशा ताश खेलते हैं, युद्ध करते हैं और मदिरा पान करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिनको कोई अयोग्यता अयोग्यता की कोई भी प्रयोजन नहीं है, महाभारत बस मिले और बस जब तक समाप्त न करे तब तक उनकी रुचि ही नहीं बन पाई, ऐसा श्रीमद् भागवत महाभारत की रचना है, जिसमें स्त्री पुरुष शूद्र डोम चंडाल मेहतर ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मवादी इत्यादि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए भी गीता इसी का एक अध्याय का अंश विषम पर्व का यह है। ऐसे ऐसे किसी शिव महाभारत में इन्होंने की अंत में विभिन्न रहे, उसमें उन्होंने कहा आपने सब कुछ किया है, महाभारत जैसा सर्वसुबोध ग्रंथ भी आपने लिखा और सब ग्रंथ लिखे हैं, किंतु आपका चित्त प्रसन्न क्यों नहीं। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर में क्या त्रुटि है। अरे तुम तो जगत गुरु हो, तुम्हारे अंदर में ऐसी कोई चीज नहीं, तुमने ये प्रकाश नहीं किया, धर्मराज के विशेष करके गुरु हो, और जो धर्म का पालन करता है उसका प्रकाश करता है, वो उसका चित्त सब समय प्रसन्न रहता है, सब एक पुंसान पर भक्ति रधोक करे अहतु क्या प्रति आता आत्मा आत्मा तो प्रसन्न होती है कैसे, भगवान की सेवा से और धर्म से होता है। तो आपने परम धर्म इत्यादि सबका प्रकाश किया किंतु आपका चित्त प्रसन्न नहीं, वह खिन्न हो रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है। गुरु जी मुझे तो पता नहीं, नारद जी कौन है ये भक्त है, व्यास जी कौन है नारायण, नारायण ही आज चैतन्य महाप्रभु जैसे रामानंद से प्रश्न किया, ऐसे ही गुरु और शिष्य का यहाँ पर भी हो रहा है। वहां पर रामानंद गुरु थे और शिष्य कौन है पूछने वाले महाप्रभु जी, ऐसे ही बहुत सुंदर, और यहाँ पर गुरु कौन है नारद जी है और शिष्य कौन है
नारायण
भाई स्वयं। मेरा चित्त प्रसन्न नहीं रहना। यदि किसी को रोग हो तो रोगी अपना रोग निर्णय नहीं कर सकता, वैद्य उसके नाड़ियों को देख करके लक्षण देख कर निर्णय करता है कि कौन सा रोग है इसको और कौन सा इसका पथ और औषधि होनी चाहिए। आप हमारे गुरु हैं, आप बताइए मुझे अंदर में कौन सी त्रुटि रह गई जिसको मैं नहीं कर सका। तो जो आपने कृष्ण लीला का जो परिपूर्ण परिपूर्णतम माधुर्य भाव है और सर्वोत्तम भाव है आपको आपने प्रकाश नहीं किया, आपने गीता में गुह्यतम सर्वगुह्यतम मत को प्रकाश किया किंतु उसका आपने विकास नहीं किया। आपने कृष्ण लीला चरित्र को केवल और भगवानों के सदृश उनके लीला का साधारण रूप में वर्णन किया किंतु कृष्ण लीला की जो खूबियां हैं इसमें जो माधुर्य है गोपियों की रस की साधना है ये सब आपने वर्णन नहीं किया। इसलिए आप संपूर्ण रूप से कृष्ण के लीला चरित्र का वर्णन कीजिए, विशेष करके ब्रज का भाव जिसमें प्रकाशित हो, जिसमें विशेष करके ऐश्वर्य रहित ऐश्वर्य से ऐश्वर्य तो पूर्ण हो किंतु माधुर्य के द्वारा आच्छादित सख बासल्य और मधुर मधुर का भी सर्वोत्तम श्रीमाती राधिका जी का जो भाव है उसको आप प्रकाशित करें, तब तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आप प्रसन्न हो जाएगा। कहिए मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कैसे लिखू कैसे प्रकाश करूं। कहिए आप भक्ति के द्वारा चित्त को समाधिस्त कीजिए, मन को निग्रह करके नहीं, योग के द्वारा पातंजल योग के अनुसार में आसन जम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा नहीं, आप और न्याय और पातंजल और सब कणाद इत्यादि विषयों के अनुसार में मन को निग्रह करने की चेष्टा न करें। वो उसमें क्या होता है, उसमें चित्त निरावलंब रहता है, उसका कोई आधार नहीं रहता उन योगों में। और भक्ति योग में कृष्ण का पात्री आधार होता है, उसमें उनकी लीलाओं में भक्तों का चित्त ऐसा डूब जाता है जो जागृत समाधि जैसे में लग जाते हैं, गोपियों की जैसे जागृत समाधि होगी। व्यास जी ने सबसे पहले मन को समाहित करके भक्ति योग के द्वारा समाहित किया, समस्त चिंताओं को दूर कर दिया और उनके लीला के उन्हें चिंतन में ऐसे लगे मानो कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के द्वारका लीला प्रत्यक्ष हाथ में रखे हुए आमने की भांति दिखाई पड़ने लगे। पुरुष को परिपूर्ण रूप में देखा, परम पुरुष को किसको देखा, कृष्ण को देखा। कौन से कृष्ण को देखा, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को, उसी के अंदर में उन्होंने मातुलेश कृष्ण और दारदेश को भी देखा। कृष्ण के साथ में देखा लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सत्यमान कोटि कोटि लक्ष्मियां ये गोपियों के रूप में, और उनकी भी सबसे श्रेष्ठा श्रीमती राधिका जी को देखा। उन्होंने चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति को भी देखा। कृष्ण के लीला होता है तदेकात्म होता है आवेश होता है युगा होता है मनंतरा होता है, समस्त अवतारों को भी उन्होंने देखा। और देख करके लीलाओं को देख करके और तब जैसा वही सूर्यनारायण कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उपबद्धता पूर्ण सा शोक मोह भया था, उन्होंने देखा जो जी भगवान को भूल करके माया के चक्कर में घूम रहा है, अनंत काल तक भगवान को भूल करके इसी माया के चक्कर में डूब रहा है और आ रहा है, कभी देवता कभी गंधर्व कभी दरिद्र कभी धनी कभी अमीर कभी कुछ कभी कुत्ता कभी गधा, इसी प्रकार से संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। और जो लोग गुरु पदार्थ करके वैष्णव के संग में हरिभजन करते हुए साधन करते 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 आगे चल रहे हैं वो धीरे धीरे माया से मुक्त होकर के कृष्ण की तरफ ले जा रहे हैं और कृष्ण की लीला में प्रविष्ट होकर के एकदम आनंदमय हो रहे हैं, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और उसी को श्रीमद् भागवत के रूप में समाधि की भाषा समाधि भाषा के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता का उन्होंने प्रकाश दिया। उसमें उन्होंने कृष्ण के द्वादश अंगों के रूप में द्वादश स्कंद लिखे, कितने अध्याय और
35
335 अध्याय और 18,000 श्लोक की रचना की और बड़े सुंदर रूप में इसमें पहले से लेकर के 9 अध्याय तक भक्तों का चरित्र, बड़े बड़े राजाओं का चरित्र, जिससे कि ऐसा वर्णन किया लोगों को संसार में विरक्ति हो जाए, वैराग्य हो, संसार नश्वर है, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। एक आदमी यदि स्वधर्म आचरण करते करते सारा जीवन भी बिता दिया तो अभी उसे क्या लाभ है, और यदि भक्ति आचरण करता हुआ यदि बीच में मर भी गया, भक्ति यदि सिद्ध भी नहीं हुई तो हानि क्या हुई, कुछ भी हानि नहीं। यदि एक दिन भी भगवान की कथा उसके कान में पड़ गई या भगवान नाम मुख से निकल गया, भगवान की लीला कथा हमारी स्मृति में आ गई, एक दिन भी ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया तो क्या होगा, यदि एक दिन भी यदि कर करके वो मर गया या पतित हो गया, कुछ अपराध यदि नहीं हुआ तो फिर से उसका आरंभ होकर के फिर आगे बढ़ जाएगा, इसमें तनिक भी कोई हानि नहीं है। वो गीता में भी लिखा है यदि थोड़ा सा भी इसका भगवान नाम का भगवत भक्ति का आचरण कर लिया जाए या भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक एक श्लोक के चार चरणों में से एक चरण अथवा उस श्लोकों में से कोई एक भी अक्षर भी यदि उच्चारित हो जाए तो अभी उसका कल्याण हो जाएगा, जब उसके निकट नहीं आएंगे एकदम गारंटी है। और नहीं संसार का समस्त धर्म भी अच्छी तरह से पालन किया और भगवान का भजन नहीं किया तो जम पकड़ लेंगे चारों तरफ से, ये अर्थ रुपया पैसा स्वजन बंधु बांधव और धर्म उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। अधिक से अधिक धर्म यदि करेगा भी तो स्वर्ग लोक ले जाएगा और फिर वहां से घुमाएगा, उसी चक्कर में डाल देगा और भी समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत संहिता को उन्होंने इस रूप में प्रकाशित किया कि जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक भक्त लोग रहेंगे तब तक श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य रहेंगे और जगत का कल्याण होता रहेगा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से हम लोग यहां से आरंभ करें और इसमें मैं तो वहां पर चलूंगा कुछ काम बस, और धीरे धीरे ये सारा दिन इसकी लौ नहीं टूटे, पीछे पीछे कीर्तन होगा, ठाकुर जी का ये भोगराग भी होगा सब कुछ, और इसी प्रकार से ये भागवत चलता रहेगा शाम के 4 बजे 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में जैसे नियमित रूप में मैं प्रवचन करता हूं वो प्रवचन श्रीमद् भागवत का ही उसमें होगा, और इसके बाद में आरती होकर के और फिर थोड़ा सा कीर्तन होकर के अच्छे अच्छे भागवत के विद्वानों का यहाँ पर भाषण और प्रवचन इत्यादि होगा, और 12 बजे रात तक ये कीर्तन इत्यादि चलता रहेगा। ठीक 12 बजे 12:30 बजे कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद में 12:30 बजे से 1 बजे तक अभिषेक इत्यादि करकर सब लोगों को चरणामृत और पंजरी इत्यादि लेकर के आज का उत्सव आज का समाप्त होगा। कोई खा ले लेना, प्रसाद मंत्र ले लेना, कल हम लोग पारण करने के बाद में तब फिर हम लोग लेंगे। इस बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सारी रात भी जग करके हरिनाम करते हैं, वो अपना कर सकेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं जो कर सकते हैं वो निर्जला उपवास भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं निर्जला वो जितना दूर तक हो सके 12 बजे तक हो जाए, शाम को हो जाए, रात तक हो जाए, जहां तक हो सके वहां तक निर्जला कर रहे हैं, और जो पूरा नहीं कर सकेंगे, जो पानी के बिना छटपट कर रहे हैं छटपट का देख भाई जरूरत नहीं, छटपट चटपट कर करके तब तक भले हरिनाम भी नहीं होगा कीर्तन भी नहीं होगा सुनना भी नहीं तो जाकर के सो जाएंगे, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा शिकंजी ले लो, नींबू दे करके थोड़ा सा ले लो शिकंजी। इस तरह से खूब उत्साह के साथ में बालक वृद्ध वृद्धा नर नारी पुरुष सभी लोग उत्साह के साथ में जन्माष्टमी का पालन करें, और कल फिर नंदोत्सव होगा। नंद बाबा और यशोदा जी सब भंडार ठीक कर रही है, उनका भंडार में आ रहा है और वो भंडार भी ठीक कर रही है और वो सभी कुछ तैयार हो रहा है। कल से फिर भंडारा वो लोग करेंगे, हम लोग भी उस भंडारे में शामिल होंगे और भक्त लोग दही और हल्दी लाएंगे, दही और हल्दी और उसमें दूध मिला करके और नंद बाबा और वो सब लोगों के सिरक यहाँ लगा देंगे और कुछ नहीं, उछाला उछाली नहीं होगी। गरीब किंच के बदले वैशाही किंच किंच न करके गरीब सबके नंद बाबा का प्रसाद यशोदा जी का प्रसाद हम लोग ले लेंगे और उसके बाद में सुंदर रूप से ये अनुष्ठित हम लोगों का भगवान की बड़ी कृपा है। कल नगर संकीर्तन भी बड़े सुंदर रूप में निर्विघ्न रूप में हजारों हजारों भक्तों के रूप में और बहुत सी कीर्तन मंडलियों के बीच में अपूर्व रूप से ही संपन्न हुआ है। गुरु पादपद्म हमारे मूल है, वर्तमान आचार्य जी की भी कृपा हमारे ऊपर में हम लोगों के ऊपर, इन सब लोगों की महापुरुषों की कृपा से ये सब संभव होता है, नहीं तो लाखों विघ्न हो जाते हैं। विशेष करके हम लोगों का ये सौभाग्य है मथुरापुरी के जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, धनी हैं, गरीब हैं, किंतु सज्जन हैं, भक्त हैं, जो नहीं भी हैं, सभी लोग अपने हृदय से आंतरिक रूप में सहयोग दे रहे हैं। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है जो सारी मथुरापुरी उमड़ पड़ती है हम लोगों के उत्सव में और सब प्रकार से हम लोगों को कोई भी चिंता इत्यादि की जरूरत नहीं होती, सब लोग वही समाधान करते हैं। विशेष करके ये सब कोई नवदीप से आ गए हैं, कोई हरिद्वार से आ गए हैं, कोई वृंदावन से आए हैं, कोई कहां से सब भक्त लोग आए हैं, सब तो मिल करके करें। तो आज हम लोग बड़े आनंद के साथ में उत्साह के साथ में ये सब करेंगे। अब यहाँ पर प्रवचन हुआ इसलिए उधर का भंडार यशोदा जी का कोई गड़बड़ ना हो जाए, आप लोग सब कमलापति भी कमला के पति उनके दास भी हैं और सब लोग हैं, ये सब लोग उठ करके देखे कि कमला का भंडार पूरा रहे, लक्ष्मी जी का भंडार पूरा रहे, सब लोग देख सुन करके उस परम उत्साह के साथ में इसमें लगे। पूर्णा पूर्ण भी है यहाँ पर पूर्ण आनंद रहेगा, कोई भी चिंता की बात नहीं रही, यहाँ पर कृष्ण का प्रेम ही मिला रहता है, यहाँ पर सभी ऐसे ऐसे सब हैं, सब समय मंगल ही मंगल है, इसलिए हम लोग का उत्सव खूब अच्छी तरह से संपन्न होगा। एक श्लोक में सब रखे करता हूँ, इसके बाद में परमात्मा जी महाराज अथवा और सब हैं, शुभानंद ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ पर आरम्भ करेंगे और ये सब चलता रहेगा, इसका तारा न टूटे। दशम स्कंध कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूत्रयो राज्यं च उभय वंशानां चरितं परमद्भुतम् यदोषश्च धर्मशीलश्च नितान् मुनिशक्तः प्रवृतांशेन अवतीर्णश्च विष्णु गिरिजान् संसनः। परीक्षित महाराज जी नौ अध्याय तक श्रवण किया, नवम स्कंध तक, नवम स्कंध के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में विष्णु वंश का परिचय दिया, कृष्ण और बलराम के चरित्र सुनाए और वो मथुरापुरी में अवतीर्ण हुए, गोकुल में लीला किए, ऐसे सहज सब बहुत संक्षेप में सुख रूप में थोड़ा सा वर्णन किया। सुंदर ही अध्याय उन्होंने समाप्त किया, परीक्षित महाराज को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुना कि हमारे वंश में मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए, हमारे पूर्वज के रूप में है, हमसे संबंधित हैं। परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता
अर्जुन,
अर्जुन और अर्जुन के भाई है मौसेरे कृष्णचंद्र जी और सुभद्रा के भी भाई हैं कृष्ण और सुभद्रा से अभिमन्यु और अभिमन्यु से ये परीक्षित महाराज, इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं आज हमारे पूर्वज जो कृष्ण है आज उनकी कथा सुनने का अवकाश मिला, प्रभु हमारा मन भरा नहीं, इसलिए आप कृष्ण की बलदेव की लीला चरित्रों को विस्तारित रूप में और अस्पूर्ण भाव से आप वर्णन कीजिए। इसलिए वो कह रहे हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। सोम माने चंद्रवंश का और सूर्य वंश के बड़े बड़े राजाओं का, भक्तों का, महर्षियों का चरित्र आपने वर्णन किए हैं। राजांच उभय वंशाना जिसमें इक्ष्वाकु, अज, महाराज दशरथ, रामचंद्र और लवकुश इत्यादि का आपने वर्णन किया और राम का अपूर्व दश वर्णन किया। इसके बाद चंद्रवंश में भी आपने प्रारंभ से ही ध्रुव के पिता उत्तानपाद और प्रियव्रत इसको बाद में ध्रुव जी, उसके बाद में बड़े बड़े ऋषि दक्ष प्रजापति शंकर जी का चरित्र और सब आपने वर्णन किया। क्यों कपिल देवमूर्ति का संवाद भी आपने सुनाया, आपने पिता सुख का उपाख्यान भी श्रवण कराया। इस तरह से आपने सब वर्णन किया, वर्णन करने के बाद भी अद्भुत चरित्र वर्णन किया। जदो श्रद्धानुशील और इस चंद्रवंश में जदो नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हो गए। यहाँ पर परम धर्मात्मा कहने से क्या तात्पर्य, जो सत्यवादी होता है वो धार्मिक है, जो लोग दूसरों के लिए अपने सिर को भी दे देते हैं वो लोग धार्मिक है, दूसरों का उपकार करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, परिस्त्रियों को माता और पुत्री के समान ज्ञान करते हैं, पाशा जुआ इत्यादि नहीं खेलते, इनसे दूर रहते हैं, अहिंसा इत्यादि का प्रत्यारोपण करते हैं, ये लोग हैं। किंतु ये परमाद्भुत जो इनका चरित्र है ये कौन, जदु महाराज का, ये केवल धार्मिक ही नहीं है, ये तो ऐसे महापुरुष हैं जो भगवत भजन करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने पिता इत्यादि को भी त्याग कर दिया, उनका आदेश नहीं पालन किया। पुत्र का कर्तव्य है कि पिता का वो आदेश माने, माता जी का आदेश माने, किंतु वह पुत्र सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के लिए भी माता पिता गुरु भाई सखा बंधु स्त्री सबको प्रत्याग कर सकता है। गुरु न सस्या, स्वजन न सस्या, पिता न सस्या, जमीन न सस्या, कैवल्य प्रस्ताद अतिश्य सस्या नमो चेत जस मुदे। अपने गुरु को, जिन गुरु ने बलि महाराज जी ने अपने गुरु को प्रत्याग कर दिया, गुरु का प्रत्याग कभी भी नहीं विहित है, गुरु को अपना भगवान का स्वरूप जानो, किंतु ऐसे गुरु को भी बलि महाराज ने प्रत्याग कर दिया कि इसलिए कि भगवान को या समस्त राज्य अपनी देने के लिए मना किया था। भरत जी ने अपनी मैया को त्याग कर दिया क्योंकि रामचंद्र जी के सेवा में बाधा हुई थी, और पिता प्रहलाद विभीषण अपने भाई को भी छोड़ दिया भगवान का भजन करने के लिए, रावण ने बाधा दी थी, सीता का हरण कर लिया था। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को छोड़ दिया और गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भगवान का भजन करने वाले ही सर्वश्रेष्ठ परम धार्मिक है और वही भक्ति जो भगवान के अहित की भक्ति करने वाले होते हैं। इसलिए जदु जी ने इसका इतिहास है वो पीछे सब देखेंगे टाइम में, उन्होंने अपने पिताजी का वचन नहीं माना, उन्होंने के पिताजी ने कहा था युवावस्था हमको दे दो, हमारी वृद्धावस्था ले लो, उन्होंने कहा युवावस्था हम नहीं देंगे, ये युवावस्था भगवान का भजन और भगवान की सेवा करने के लिए है, भोगों को भोगने के लिए नहीं है, आप भगवान का भजन कीजिए, मैं अपना युवावस्था को दे दूंगा, किंतु आप भोग विलास करेंगे, राजधन का भोग करेंगे, इसके लिए मैं नहीं पूछ। उसके पिताजी असंतुष्ट हुए, नाराज हो गए, फिर उनके पुत्र कुरु जी ने कहा अच्छा बात है मैं आपको देता हूं, उन्होंने अपना युवावस्था दे दिया और उसके बदले में वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने कहा जैसे तुम ही हमारा यथार्थ पुत्र है, जाओ तुम्हारे वंश के लोग, तुम हमारे वंश का उत्तराधिकारी होगा और तुम्हारे वंश के जो जन्म लेने वाले होंगे उस वंश में राजा होते जाएंगे। जदु का कोई भी जदु न तो खुद राजा होगा और न सम्राट होगा, न उसके पुत्र और वंश परंपरा से कोई राजा होंगे। सुनकर कहा ये मस्तु ऐसा ही हो, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान उनको प्रसन्न होकर के उसी कुल में कृष्ण के रूप में, बलदेव के रूप में ये पधारे। उसी वंश में, चंद्र वंश में ही हमारे पांडव लोग इत्यादि भी, उस समय के जितने भक्त लोग थे उसी वंश में सब आए थे। तो जदु वंश में भी जदु से क्रम से नीचे आते आते सूरसेन हुए, उनके पिता देवनी है, देवनी हो गए। देवनी के दो पत्नियां थी, एक क्षत्रियानी और एक भी गोपी, गोपी से परजन्य और परजन्य से नंद महाराज और नंद महाराज से कृष्ण हुए, और इधर अजामी से हुए सुरसेन, सुरसेन से हुए वसुदेव महाराज और वसुदेव महाराज से कृष्ण हुए। इस तरह से दोनों परंपराएं एक से निकल करके और फिर ऐसे होती हुई फिर दोनों एक में मिल गए। एक में हुए कृष्ण ऐश्वर्य रूप में आए समग्र ऐश्वर्य इत्यादि के साथ में, और एक समय में समस्त आधुर्य इत्यादि लेते हुए माधुर्य के द्वारा प्रबंधित होकर के माधुर्य लेकर के दोनों ने मिलकर के मिलाई थी। इसमें कृष्णचंद्र जो द्वारकाधीश मथुरेश थे, मथुरा द्वारका में ऐश्वर्य में ली जाएगी थी, उसमें भी माधुर्य है किन्तु ऐश्वर्य के द्वारा माधुर्य गुप्त पूछता है। अब ब्रज में माधुर्य प्रकटित है और ऐश्वर्य को छिपा हुआ है, ऐसे सब लीलाएं थी। उन्होंने कहा जत्रा अंशेन अवतीर्ण कृष्ण विष्णु गिरजान संसना, जहां पर कि अंश के साथ कृष्ण भी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां पर प्रकटित हुए। अंश के साथ में मैंने क्या, बलदेव न सह, बलदेव उनके अंश है उनके साथ में, और अंश कौन है,
सब अवतार
और सब
अवतार
अवतार में द्वारका में बलदेव
चतुर्भुज
वासुदेव
संकर्षण
प्रद्युम्न अनुरुद्ध उनके चतुर्भुज क्या, किंतु यहाँ पर अंश के सहित में ये अतिरुद्ध में ऐसे विष्णु का संपूर्ण जस्त वर्णन नहीं किया जा सकता है, अंश में कुछ वर्णन कीजिए। इसके बाद में अवतीर्य जंदो जदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा नो मत विस्तरा निवृत्त दर्शीयमान औषधा श्रोति मनोभिराम कहोत्तम श्लोक गुणानुवाद कुमार विरजे कपिना पशुना। हो महाराज सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भूतभाव भूतों को पालन पोषण करने वाले सर्वज्ञ संपूर्ण भगवान जदुवंश में अवतीर्ण हुए, वहाँ पर विश्व के कल्याण के लिए क्या क्या लीलाएं की, वो मथुरा में प्रकटित होकर के गोकुल में क्यों चले गए, गोकुल में कुछ दिनों तक लीला करने के बाद फिर मथुरा में क्यों चले आए, और मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद में द्वारका क्यों चले गए, इसका कारण हमें बताइए। मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की, इसके पश्चात में गोकुल इत्यादि में कौन सी लीलाएं की, ब्रजमंडल में कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बाद में फिर मथुरा में आकर के क्या क्या किया, गुरुगृह में कैसे पढ़े लिखे, तत्पश्चात फिर चले गए द्वारका में गए क्यों, और वहां पर कितनी स्त्रियों के साथ उनकी शादियां हुई, कैसी कैसी शादियां हुई, कौन कौन सी लीलाएं की, इस सब का वर्णन आप विस्तार पूर्वक कीजिए। जो लोग निवृत्त दर्शन उपगिया माना भौरों की औषधि क्या है, एकमात्र हरि कथा, वो हरि कथा सब हरि कथा ही भौरों की व्याधि है औषधि है। हाँ है तो किंतु अवैष्णव मुख गुरुणम पूतम हरि कथा अमृतम भगवान की लीला कथाएं सभी भौरों के लिए औषध है, किंतु अवैष्णव यदि व्यक्ति हो और मुख से निकली हुई हरि कथा हो तो सांप के निकले हुए विष के समान वो कार्य करता है, उस कथा को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो भागवत की कथा कहने लगेगा कोई एक व्यक्ति और उसमें सत्यनारायण की कथा मिला लेगा, कहे वही कृष्ण सत्यनारायण है, और भागवत का कथा कहने से पुत्र लक्ष्मी इत्यादि सभी इसी की प्राप्ति हो, वही सत्यनारायण का वाचना हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें लगा देगा, और इसका पाठ करने से लड़का पैदा हो जाएगा, इसका पाठ करने से लोग दूर हो जाएगा, इसका पाठ करने से स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा समझा देगा भागवत का यह पाठ पाइए। इसलिए वैष्णव को मुख से भगवान की कथा सुनिए, और विशेष करके निवृत्त कर से उपगी जमाना जिनकी समस्त तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी हैं, कोई भी कामना नहीं है, जिसको अर्थ धर्म काम मोक्ष यहाँ तक कि नारायण की भक्ति, यहाँ तक कि राम और द्वारकाधीश इत्यादि के प्रति भी शुद्ध निर्मल अनुराग नहीं, कृष्ण के चरणों में राधा जी के चरणों में अनुराग है, ऐसे परम संत जो सुखदेव गोस्वामी है परम निवृत्त है, ऐसे लोगों के मुख से जो हरि कथा निकलती है वो फौरों के लिए औषधि है और भक्तों के लिए कैसा है रसमयी है और ब्रज लोक में पहुंचा देने वाली कथा है। इसको विषयी त्यागी मुक्षु योगी भक्त एकांतिक भक्त रसिक भक्त सभी लोगों के लिए परम आदर। कौन ऐसा मूर्ख आदमी है आत्मघाती मनुष्य है जो कि भगवान की कथा ऐसे महापुरुष के मुख से निवृत्त कथा सही मुख से न सुने जो भव रोग का औषधि और ब्रजरस को देने वाली ये कथा है। ऐसी कथाओं के प्रति ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति आत्मघाती है जो रुचि नहीं होती है। इसलिए सब लोगों को भागवत की कथा देनी चाहिए, विशेषकर उनके जन्म इत्यादि तिथियों के अवसर पर यह तो जरूर सुनना चाहिए। आज ही तक कह करके मैं अपना अभी वक्तव्य समाप्त करता हूँ, इसके बाद में धीरे धीरे